ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद्भागवतम के चतुर्थ स्कंध के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और अध्याय का शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को शाप। कस्तम चराचरम गुरुम कस्तम चराचरम गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महान। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष वैर भाव रखते। अनुवाद कृपया मेरा अनुसरण कीजिए। भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं। वे देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष बैर भाव रखता। तात्पर्य, शिव का यहां पर चराचर गुरु अर्थात चर और अचर जर जंगम का गुरु कहा गया है। कभी कभी इन्हें भूतनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है मंद बुद्धि लोगों का आराध्य देव। कभी कभी भूतों का अर्थ प्रेत से भी लगाया जाता है। शिव जी भूतों तथा असुरों को सुधारने का भार लेते हैं, देव पुरुषों की बात ही नहीं। अतः वे मंद बुद्धि तथा आसुरी व्यक्तियों तथा उच्च कोटि के विद्वान वैष्णवों के भी गुरु हैं। यह भी कहा गया है वैष्णवानाम यथा शंभु, शंभु अर्थात शिव वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक ओर वे मंद बुद्धि असुरों के आराध्य देव हैं, तो दूसरी ओर वैष्णव या भक्तों को सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः उनका संप्रदाय चलता है, जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। यदि वे वैर करें या कभी कभी क्रुद्ध हों, तो भी ऐसे पुरुष से देश नहीं करना चाहिए। इसीलिए विदुर ने विस्मय पूर्वक पूछा कि तो फिर दक्ष ने ऐसा क्यों किया। दक्ष कोई सामान्य व्यक्ति न थे, वे प्रजापति हैं और जनसंख्या को बढ़ाने का भार उन पर है, और उनकी सभी पुत्रियां विशेष रूप से सती अत्यंत सामान्य हैं। सती शब्द का अर्थ है परम साध्वी। जब कभी सतीत्व की चर्चा होती है तो दक्ष कन्या शिव की पत्नी की सती का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इसलिए विदुर को अत्यंत आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने सोचा दक्ष इतने महान पुरुष और सती के पिता हैं और शिव जी सबों के गुरु हैं, तो फिर उनमें इतना बैर भाव कैसे संभव हुआ है कि अत्यंत साध्वी देवी सती को उनके इस झगड़े के कारण अपने प्राण देने पड़े। नमः ओम विष्णु पादाय श्री कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषम शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर हम लोग भगवान शिव की अब जो है वो और महान पुरुष भगवान प्रजापति दक्ष की कथा सुनेंगे ना। दोनों ही अत्यंत महान हैं। और उन लोगों की कथा हम लोगों को सीखनी चाहिए, उससे तमाम शिक्षाएं मिलती हैं, इसीलिए यहां कही गई हैं। जो शिक्षाप्रद कथाएं हैं ना, स्कूलों में भी आप देखिए कथाएं शिक्षाप्रद बताई जाती हैं। अब तो बहुत लिमिट कर दिया है, केवल हमारे पूर्वज या थोड़ा सा ना, ज्यादातर तो आइंस्टाइन और बड़े बड़े महापुरुषों की। अब इन पुरुषों को एकदम कुछ नहीं माना है धर्म निरपेक्षियों ने। दक्ष की कथा को, भगवान मनु की कथा को मनवादी कह के गाली दी जाती है, राइट। आइंस्टाइन और जो एक बंदर का थ्योरी उत्पादित किया था डार्विन, इन सबकी अब तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है थ्योरी, जो कि कहते हैं हम बंदर की औलाद हैं, तो इतने बड़े महान साइंटिस्ट हो गए कि जिसका न कोई और है न छोर, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाए जा रहे हैं न। इतना कहने से अब इन बंदर का औलाद कैसे आदमी हो सकता है, ये समझ नहीं, असमझ बात है न। क्योंकि प्रभु ने 84 लाख योनियां पैदा की हैं और बहुत छोटे से बॉर्डर से अलग अलग हैं वो, जैसे चिड़ियों में है। अब गौरैया भी चिड़िया उसी ढंग से मिलती, बहुत सी चिड़ियां हैं एक रंग और एक आकार की हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा न था उनमें डिफरेंस है, उनमें व्यवहार में, रहन सहन में, पक्षी बनाने में, बच्चे पैदा करने में, पालन पोषण में। कोई मछली खाती है छोटी सी है, कोई एकदम वेजिटेरियन है केवल चावल खाती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इसी पक्षी से ये पक्षी बना ना, क्योंकि ये जो प्रभु की लीलाएं हैं इसी को तो समझना है कि कितने बड़े इंजीनियर हैं ये, कि गागर में सागर भर देते हैं। आप देख लीजिए जो कहावत है, गागर में सागर भर देना ना, 2 in 1, 3 in 1 तो बनाया हम लोगों ने, लेकिन इतना बड़ा अभी कहां बना है सुपर कंप्यूटर की सब चीजें एक साथ चले। कुछ कंप्यूटर बने हैं वो अपना जो है वो देख सकते हैं सैटेलाइट, कुछ देख सकते हैं अणु बम, कुछ जो है चल सकते हैं ऑटोमेटिक मशीनें, जैसे अमेरिका वगैरह ने कहते हैं बना ली हैं, फिर भी इतना डर रहे हैं कि लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। इतनी सब मशीनों को होने के बावजूद आदमी एकदम से निर्भीक नहीं है अब। पहले एक आदमी डंडा लेके चलता था, निर्भीक होता था। आदमी के पास परमाणु बम जेब में है कुछ लोगों के, हमने सुना है बिन लादन से लेके और जो है बिल क्लिंटन तक के, लेकिन वो लोग भी बहुत ही डरे हुए रहते हैं, कभी उनको आप देख नहीं सकते जल्दी। अगर वो दिल्ली में आ जाएंगे तो पूरी दिल्ली में अर्ध कर्फ्यू लग जाएगा ना। इस तरह की स्थिति है। सो भगवान ने जो किया है गागर में सागर, उस चीज को हमें समझना है कि थोड़े से भाग से ना, बंदर अलग हो गया, मनुष्य हो गया। बंदरों भी सैकड़ों प्रजातियां हैं, मनुष्यों में हजारों हैं। तो ये प्रभु की कृपा है, लेकिन इन सब चीजों में जो जीवित हैं, चाहे कीड़े हों, मकोड़े हों, पक्षी हों, भंवरे हों, सब में एक भावना है आत्मसम्मान की। उनका सबका अपना सोसाइटी में सम्मान, उनका अपना एक लीडर होता है जो सबसे अपने को सम्मानित व्यक्ति घोषित करता है। वो घोषित कर, ये स्वघोषक किया जाता है। इसके लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। कभी कभी बंदर देखिए लड़ते हैं, पक्षी लड़ते हैं, सुअर लड़ते हैं, सब लोग लड़ते हैं अपने को। जब अगर आपको लीडर होना है तो कहते हैं मांगे से भीख नहीं मिलती, राज मिल नहीं मिलता, भीख मिल जाती मांगने से। इसके लिए आपको लड़ना पड़ता है। इसी तरह से हमको जब काम, क्रोध, लोभ, इन सब चीजों को जीतना होता है तो हमसे उनको लड़ना होता है, उनसे बराबर की लड़ाई करनी होती, तब हमको देखना होता है कि हम हार रहे हैं कि जीत रहे हैं। इसमें आत्ममंथन फिर करना पड़ता है ना, यही प्रोसेस है। तो जो ये अहम की भावना है, ये देवताओं में भी थी, इसीलिए तो मर्ण धर्मा है। ये भावनाएं जो है, मान अपमान यो सुख दुख का जो है अनुभव, मान अपमान का अनुभव, ऊंच नीच का अनुभव, यही तो मनुष्य है, यही तो मर्ण धर्मा है। इस चीज को पूरा तौर पर जो नहीं समझ पाएगा वो जो है क्या है, वही अधूरा पुरुष है। और जो समझ लेते हैं इसको, वो जो है सब तीनों लोक से ऊपर, तीनों जो है वो गुणों से और तीनों जो है लोकों से, दोनों से ऊपर हो जाते हैं, तीनों गुणों से और तीनों लोकों से। देखिए उनको गुणातीत कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनके कितने बड़े बड़े उपाधि हैं बहुत से महात्माओं के। अच्छा, जैसे आप देखिए भौतिक संसार में कुछ लोगों की अपनी जो है वो सीमाएं हैं कि उनको आदर सूचक आप कहिए, जैसे आदरणीय या माननीय कोर्ट ने कहा, या माननीय जो है राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति ने कहा, उनकी ना एक अपनी मर्यादा है। उसी तरह से जो है इसकी भी अपनी जो है भौतिक संसारिक लोगों को भी अपनी मर्यादा है, और उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए हर आदमी को सतत कार्य करना पड़ता है। जैसे अपने परिवार को परिचालन की मर्यादा है, सोसाइटी को परिचालन की मर्यादा है, हमें सोसाइटी में रहन सहन की अपनी मर्यादा है, बच्चे की, पुरुष की, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सबकी अलग अलग थोड़ी थोड़ी जो है भिन्न मर्यादाएं हैं। कुछ मर्यादाएं तो कॉमन है, लेकिन कुछ मर्यादाएं अपनी अपनी जात धर्म संस के आधार पर हैं। तो उनका जहां कहीं भी जो है वो अतिक्रमण होता है, तो वो जो है जो गुण हैं तीनों हमारे, सत्व, तम और रज, ये हावी हो जाते हैं, ये हमको मरण धर्मा बनाते हैं, यही हमको जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में भी डालते हैं, और इन्हीं को कंट्रोल करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य बताया शास्त्रों में। हम लोग इसीलिए यहां, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं आजकल, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उन लोगों को क्या बताया जाता है बचपन से ही, खूब पढ़ो लिखो और जो है खूब पैसे कमाओ, खूब टीवी, बड़ी नई अच्छी अच्छी कारें, यानी भौतिक चीजों में जो है वो व्यस्तता की बताते हैं बातें। लेकिन हमारे यहां गुरुकुल में, किसी भी संप्रदाय में जो आचार्य होते हैं, चाहे रामानुज संप्रदाय हो, चाहे शंकर रुद्र संप्रदाय हो, चाहे महर्षि गौड़ीय संप्रदाय हो, बहुत से और भी संप्रदाय हैं, सब संप्रदाय हैं, इवन सिख इत्यादि संप्रदाय, इवन मुस्लिमों में भी, उन लोगों, सब लोगों में यही बताया जाता है कि मनुष्य का 80-90% भाग ईश्वर की आराधना में जाना चाहिए, 80-90% भाग उनकी जो है वो शिक्षाओं को पालन करने में, समझने में, पढ़ते भी रहते हैं लोग, इवन जो भी दो छोटे मोटे धर्मों में दो चार किताबें हैं केवल, अपने तो बहुत बड़े वेद, वेदांग, उपनिषद, कितने कितने हैं जो शास्त्र, अष्टादश पुराण, बहुत पुस्तकें अपने तो, उसको तो पढ़ने में एक आदमी को हम समझते जीवन खर्च हो सकता है अगर 2-3 बार किताबों को पढ़ा जाए, तो वो लोग उनको कंठस्थ करते रहते हैं, और इसलिए कंठस्थ करते हैं कि वो इन चीजों को भूल न जाए कहीं, क्योंकि हम लोगों की दूसरी कमी भूल जाना है। हम एकदम सर्वगुण संपन्न लय से हमने बीए पढ़ा है या गुरुकुल में मास्टर किया है सब है, और जरा कहीं सा जो है वो कुछ डिस्टर्ब हो गया मन, और बस फिर आदमी एकदम से आग बबूला हो गया, फिर उसको जरा भी ज्ञान नहीं है ना कि वो धार्मिक संप्रदाय। लोग कहते ना, अरे महाराज शांत हो जाइए, अरे आप गेरुआ कपड़ा पहने उसकी तो मर्यादा रखिए, या नेताजी है कहते हैं, अरे बाप नेता है आप, या कहेंगे आप दरोगा जी हैं, इस तरह कैसे करते हैं समाज हम लोगों के प्रति, ना मर्यादा की याद दिलाते हैं लोग कि इन मर्यादाओं का तो कम से कम स्मरण करिए, क्योंकि ये समय पर भूल जाती हैं। इसीलिए भगवान ने कहा है कि अंत काले चमाम स्मरण मुक्तवा कले, अंतकाल में आप भगवान स्मरण भी भूल सकते हैं, ये स्मरण विस्मरण शक्ति इतनी प्रभावी है, क्योंकि इसकी बहुत सी जो है वो जो हमारा दिमाग है इतना छोटा कंप्यूटर है कि लाखों चीजें कर रहा है एक साथ, ये बहुत सी चीजें कंट्रोल, हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर रहा है, हमारी ब्लड जो है वाहिकाएं भी चला रहा है, दिमाग को भी कंट्रोल कर रहा है, हाजमा को भी कर रहा है, हमारे जो है शरीर को भी स्थिर रखे हुए कि हम बैठे हुए नहीं, लेट सकते थे, राइट, तो बहुत बहुत कार्य कर रहा है। और उसमें जो है जब एक विशेष कार्य की ओर ध्यान दिया जाता है तो कभी कभी दूसरा काम भूल जाता है, तो आदमी अति क्रोधित या अति उत्साहित भी हो गया तो भी अति उत्साह में भी बहुत काम भूल जाता है ना, तो विस्मरण शक्ति जो है हमेशा बनी रहनी है, इस चीज का ख्याल रखते हुए इसीलिए आदमी जो है अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपने जो है वो हर चीजों को लिमिटेड करते थे। सादा जीवन उच्च विचार, इसको जो है गागर में सागर कहा जाता था कि जीवन एकदम सिंपल हो और विचार हमारे उच्च हो। सिंपल जीवन से हम अपने समय को निकाल सकते हैं, नहीं देखिए आजकल कितना कठिन जीवन है। हम समझते हैं जो 10 लाख रुपए की नौकरी हर महीने कर रहे हैं वो लोग 22-21 घंटे काम कर रहे हैं, मुश्किल से 3-4 घंटे ही सो रहे हैं, इवन मोबाइल लेके वो टॉयलेट जाते हैं क्योंकि वहीं पर फोन आ सकता है, इतने वो जो है एक्साइटेड, उनको अटेंड करना है तब बिजनेस चलना है ना। इतनी व्यथा एक जो है वो मनुष्य के लिए जो कि मरण धर्मा है, हम चाहे जितना विकास कर लें भौतिक, ये सब एक दिन यही रह जाना है। भौतिक विकास का कोई जो है वो न अंत है और न कोई अर्थ है, ये एकदम अनर्थ है। कुछ मायनों तक तो ये सही है, लेकिन एक निश्चित मात्रा से ज्यादा, जैसे भोजन है, भोजन आपने उपयुक्त मात्रा तक किया, एकदम जरूरी था और एकदम सही है, आपने थोड़ा सा भी अति भोजन कर लिया आप अस्वस्थ हो गए, ज्यादा कर लिया ज्यादा अस्वस्थ हो गए, और अत्याहार में तो मर भी सकते हैं, केवल भोजन ही खा के घी पी के भी आप मर सकते हैं। हम नहीं जानते अमृत पी के मर सकते हैं कि नहीं, कोई अमृत पी के मरा है? कोई नहीं मरा है। देखो ना, राहु केतु ही बच गए थे जबकि वो पिए भी नहीं थे। तो अमृत क्या है? ये कथा पान, ये जो भगवान की कथा पान है, ये कथा अमृत रूप है, इसको पीते रहिए, इसको पीते रहिए, कथा पान करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। इसी सत्संगति से जड़मति होत सुजान, जो जड़मति हम लोगों की, क्योंकि जन्म जन्मांतर से देखिए ना कितना लोग कष्ट पाए, इसको अगर गौर से आप देखिए, कुत्ता है कितना कष्ट पा रहा है, अच्छे जीवन के लिए कितने कुत्तों से वो लड़ता है ना, कितना संघर्षपूर्ण वो जिंदगी अपनी बिताता है। कोई भी पक्षी हो, कोई भी, हर आदमी संघर्ष कर रहा है, हर पक्षी संघर्ष कर रहा है आहार प्राप्ति के लिए, सम्मान को बनाए रखने के लिए ना, सब कठिन परिश्रम कर रहे हैं। इसी तरह हमको भी इस जो हमारी ये आध्यात्मिक लाइफ है, इसको बहुत ही इजी नहीं समझना चाहिए। जब एक बार अभ्यस्त हो जाएंगे आप, तब तो इजी है। अगर अभ्यस्त नहीं है, अभ्यासेन तो कौन ते वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य दो चीज बहुत जरूरी है। इन दो चीजों से अगर कोई लैस है, तब वो जो है अपने जीवन के जो हमारा मार्ग है वास्तविक, उस ओर प्रशस्त रह सकता है, वरना बीच में बहुत से जो है वो बाधाएं हैं, रास्ता बहुत लंबा है, बहुत से चोर लुटेरे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये लुटेरे बीच बीच में अपने वो बनाए हुए हैं होटल्स, इसमें अगर आप बीच में ठहर गए ना, क्योंकि लंबा है सफर, इसमें कभी रात तो होगी ना, रातें तो आएंगी क्योंकि रात दिन भगवान ने बनाया है। तो ऐसे समय में भी आपको ऐसा जो है वो बनाए रखना है अपने आप को कि कभी आप विस्मृत न हो। बताया ना कि जो हमारी विस्मृति की भावना है बहुत ही प्रबल है, इसलिए विस्मृति को भी बनाए रखना है कि समझना है कि कहीं हम भूल न जाएं। भूल सकता है आदमी, कभी भी भूलने की प्रवृत्ति बहुत तेज है आदमी में, जितना उस काम कर सकने में भी है उतने आदमी जब सो जाता है हर चीज भूल जाता है। प्रभु ने ऐसा बनाया है इसको कि आप जो है थोड़ी देर के लिए विश्राम करिए, जैसे ही आदमी थोड़ा देर के लिए विश्राम किया, आराम पाया, वैसे ही आदमी इंद्रिय जो है सुख की ओर बढ़ सकता है। सोचता चलो इसको भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है, हरि नाम तो कर ही रहे हैं, तिलक वगैरह तो लगाए ही हैं ना, ऐसा हो जाता है ना, होता है ऐसा, हुआ है ऐसा। हाँ, तो एक मिनट का भी जो है वो आलस्य, प्रमाद जिसे कहते हैं, आलस्य मां करु, प्रमाद मत करो, तुरंत समय से उठो, समय से उठो, जरा भी अत्याहार न हो, जरा भी अति जो है वो शयन न हो, जरा भी अति संचय न हो, किसी चीज का अति न होनी चाहिए। अति होने पर, एक चीज की अति हो गई, सभी चीजें असामान्य हो जाएंगी ना। जैसे सिमेट्रिकली आप घर बनाओ, एक इंच का डिफरेंस आ गया, दो इंच का भी आ गया ना, हाईवे जाकर के एकदम बीसियों मील तक जो है वो डिफरेंस हो जाएगा, एक इंच के स्टार्टिंग जो है वो उससे डिफरेंस से। इसलिए जो है एक इंच का भी डिफरेंस मत दीजिए, हमेशा जो है जागते रहिए, कभी भी जो है वो इन सब चीजों में लापरवाही न हो, यही हम लोगों का उद्देश्य है, यही हम लोगों को करना है ना। और नहीं तो जो है देख लीजिए, जैसा कि दिखा रहे हैं कि इवन महान महान पुरुष मानापमान में, क्रोध में एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। हाँ, देखिए अब जैसे ये हैं आपके भगवान दुर्वासा ऋषि, ब्राह्मणों के जो है वो गुरु हैं, और क्रोध के परम अवतार हैं, रुद्र के अवतार थे ना दुर्वासा ऋषि, बुद्ध के अवतार हैं, वो तमाम लापरवाह पुरुषों के आगे पीछे जो है घूमते हैं और श्राप दे देते हैं। जरा सा भी लापरवाही देखिए, लापरवाही की परेशानी परीक्षा भी ली जाती है। अब जैसे आपके देखिए कितने जो है तपोमयी थे पांडव, अब वो बेचारे कष्ट पाने लगे देव योग से, परीक्षा उनकी शुरू हो गई, ट्रायल शुरू हो गया। देखिए ये तो भगवान का नियम है, ये तो ट्रायल लेते ही रहेंगे आदमी। जैसे आदमी जन्म लेता है फिर बढ़ता है फिर जो है प्रौढ़ होता है, अपने आप ये सब होता रहता है, इसको कोई जो है वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, समय के हिसाब से सब ऐसा प्रभु ने बनाया है। और आपकी परीक्षाएं होती रहती, बचपन में आपने असावधानी कर दी, बहुत से बच्चे बेचारे जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, बचपन में बेचारे जेल चले जाते हैं। तो इस तरह जो है परीक्षाएं हमारी जारी रहती हैं। तो दुर्वासा ऋषि ने भी जो है परीक्षाओं का अपना काम जारी रखा था, कई लोगों को उन्होंने श्राप दे दिए थे, कई लोगों को उन्होंने तो स्वर्ग भी पहुंचा दिया अपने आशीर्वाद से, ऐसी बात नहीं है, जिनसे प्रसन्न हो गए वो। जैसे गुरु होते हैं, गुरु जिस जो है वो अपने शिष्य पर छात्र पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको, और जो है वो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि आशीर्वाद भी कोई चीज होती है। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से कोई काम नहीं चलने वाला है जब तक जो है वो भरपूर आशीर्वाद न मिले ना। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारो नित्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम, ऐसा हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि जो अभिवादनशील है भी, देखिए प्रणाम गुरु जी या प्रणाम महाराज, देखिए बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं, दिल्ली बंबई की वन है और काफी बड़ी सोसाइटी की, लेकिन अभी उनको जो है वो ज्ञान है, पैर छूते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान के, ब्राह्मणों के, गायों के, उनके कल्याण के लिए काम करते हैं, कभी कभी गौशालाएं बनाते हैं, दान देते हैं। तो दुर्वासा ऋषि भी जो है अपना पांडवों की परीक्षा लेने का उनको जो है वो मिल गया अवसर किसी कारण बस। अब हालांकि कोई ऐसा वो नहीं था टकराव का महाराज युधिष्ठिर और जो है दुर्वासा ऋषि में, लेकिन दुर्योधन थे, उन्होंने लगा दिया उनके पीछे। अब जो है दुर्वासा ऋषि ने सोचा चलो जो है महाराज युधिष्ठिर की जो कि धर्म के अवतार ही थे स्वयं, वो उन्हीं की परीक्षा लेने पहुंच गए अप्रत्यक्ष रूप से। और देखिए भक्त को कोई भी से धर्मराज थे वो भी श्राप दे सकते थे बराबर की, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन जो है उन्होंने भगवान का शरण ले लिया कि चलो भगवान से ही पूछते हैं इसका जो दुख का निवारण का वास्तविक उपाय क्या है कि तूफान भी गुजर जाए और ज्यादा नुकसान भी न हो। और एकदम उसका परिणाम सही रहा, क्योंकि उन्होंने जो वंदनियों से स्वयं भगवान से लिया था उपाय। अब उन्होंने जो है वहां तक वो वापिस ही नहीं आए परीक्षा लेने, उनकी खुद ही की परीक्षा हो गई, अपना उनका पेट ही भर गया जिसलिए वो परेशान थे और अपना वो चले गए। सो इस तरह से जो है परीक्षाएं अपना पूर्ण हो गई। तमाम महात्माओं ने परीक्षा बनी ही रहती है, किसी भी महापुरुष का शिल प्रभुपाद का आप लीजिए, कहा दिल्ली में बेचारे जो मैगजीन जो है 50 डिग्री में बैक टू गार्डन मैगजीन बांटते थे वो गली गली, वहीं पर एकदम से हाथ जो है छत के छोटे से कमरे पर रह करके उसका प्रिंटिंग वगैरह का काम का मैनेजमेंट करते थे। एक वक्त तो ये था, परीक्षा हो रही थी कदम कदम पे। एक बार तो शिल प्रभुपाद जी बेहोश होकर गिर भी पड़े थे भीषण दोपहर में, कहीं से या तो प्रिंटिंग प्रेस से बात करके आए थे या बैक टू गार्डहेड डिस्ट्रीब्यूट करके आए थे। यहां तक स्थिति थी। एक बार तो जो है लिखा हुआ है बायोग्राफी में लीलामृतम में शिल प्रभुपाद के, उनको बैंक चौकीदार ने ही पहचानने से मना कर दिया था, पूछने लगा आपका अकाउंट भी है यहाँ कि नहीं, नो, क्योंकि जो अग्नि है कभी कभी छुपी रह सकती है, बहुत छोटी होती है वो। आपने तीली जलाई और आपने सोचा अग्नि बुझ गई, आपने कूड़े पर फेंक दी या कपड़े पर फेंक दी और मिनट भर में अग्नि जल सकती है। तो उसी तरह से वो नहीं समझ रहा था कि शिल्प उपाध कितने विद्वान है उसका इतना अज्ञानी। तो इस तरह से जो परीक्षाएं दम हर कल पल हो रही सबकी, हम लोगों की भी, हम लोगों ने कितनी परीक्षाएं दे डाली और कितनी अभी देनी बाकी, पल पल पे हो रही है। तो एक सेकंड में आदमी की मौत हो सकती है, परीक्षा में आप फेल हो गए और आप जान गंवा सकते हैं कभी कभी तो किसी से आपका झगड़ा हो गया या आप सड़क पे हैं तेज गाड़ी आ रही है, आप परीक्षा में फेल हो गए, राइट जो है जजमेंट न लिया, آپ کو سر سے سماپت کر دیا. ایک سیکنڈ میں آپ زندگی گنوا سکتے ہیں. تو پریچھائیں کبھی کبھی کٹھن بھی ہوتی ہیں, ان کا بہت جو ہے وہ ساہس پورن اور جو ہے وہ دھیرے سے کام لیا جاتا ہے. ہاں, تو ان پریچھاؤں کو پار کرنے کے لیے ہم لوگوں کے لیے اس وقت جو بتایا گیا ہے وہ ایک مہا منتر بتایا ہے. چیتن مہاپرو نے کہا میں مورکھ ہوں اور میرے گرو نے کیول یہی ایک مہا منتر دے دیا ہے, تم اسی کو جپو اور اسی سے ساری بادھاؤں کو پار کر جاؤ گے, سارے شاستروں کا گیان حاصل ہو جائے گا. وہ کیا ہے؟ ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے, ہرے راما ہرے راما رام راما ہرے ہرے. ہاں, یہی ایک ایسا مہا منتر ہے جس کو شیل پرپاد پورے دنیا میں لے گئے, اور اس کے جو ہے وہ پربھاؤ سے, کیونکہ جو شرون اندری کا جو پربھاؤ ہے وہ بھی بہت تیز ہے, وہ بھی آدمی کو نچا دیتا ہے. ہم نے دیکھا ہے لوگ گانوں پہ ناچتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سے دیکھیے لوگ جو ہے مہا منتر 7 بجے کی آرتی میں ہو چاہے گرو پوجا میں ہوتا رہتا ہے. ایون باہر کے لوگ جو کبھی ہم لوگ تو بھلا بھکت ہیں ناچتے ہی رہتے ہیں, لیکن جو باہر کے ہیں مدھیہ پردیش کے ہیں آدیواسی ہیں جو کبھی سنے نہیں ہوں گے اس طرح کا پورن منتر. بہت لوگ تو جپتے ہیں, کوئی ہرے رام ہرے رام, کوئی ہرے کرشنا کوئی ہرے کرشنا ہرے رام, کوئی رادھے رادھے, بہت سے منتر ہیں ان لوگوں کو جپتے ہیں اور ان پہ اپنے ناچنے کی الگ کلا ہے الگ الگ تھاپوں پہ نا. لیکن اس تھاپ کو آٹومیٹک سمجھ جاتے ہیں اور سوامی نت اسٹیپ کرنے لگتے ہیں. ہاں, بچے تک, ایون بچے جو کیول کھڑے ہو سکتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں اور مردنگ اور کرتال بجتے رہتے ہیں. تو یہ جو شرون اندری کا اتنا جو ہے وہ پاورفل ہتھیار ہے کہ ممبئی سے لے کے مانٹریل تک اور میلبورن سے لے کے مومباسا تک جو ہے وہ ایک دم سے ہری نام مے کر دیا پورے سنسار کو نا. سب سے پہلا کام 8 بجے 7 بجے صبح ہری نام ہی کرتے تھے ہم لوگ صبح اور شام. کبھی کبھی تو بریک فاسٹ کے پہلے ترنت بعد ہم لوگ ہری نام کرنے چلے جاتے تھے, کیونکہ اسی سمے سب پورا شہر کھلتا ہے 9 بجے 10 بجے اور سب لوگ دکانوں میں جا رہے ہیں, سب ویسے بھاگ رہے ہیں. ہاں, اور ایک پیپر ایسے کھینچ لیتے ہیں اور ایک ڈالر کا کوائن رکھے اس کو ایک سیکنڈ میں دیکھ لے کے وہ بھاگ رہے ہیں بسوں کو پکڑنے ٹرام پکڑنے, بٹ پھر بھی وہ سن رہے ہیں ہری نام. وہ اس کی اور تھوڑا دیکھتے بھی جائیں کہ یہ بھی ہاں اچھا اتنے لوگ ہیں ایسے ہیں, بہت بار دیکھا ہے تو بھی اٹریکشن ہو رہا ہے ادھر. ہاں, اور ان کا اپنا بھوتک جو ہے وہ تو آج کل تو موبائل میں لوگ لگا ہی رہے ہیں, پہلے تو اتنا چلن نہیں تھا. جب یہ 10 سالوں میں ایسا ہوا ہے کہ اب تو کان میں ہی ٹھونس دیا. اب ایسی استھتی میں ہوگا کیا کہ دماغ ایک دم ڈل ہو جائے گا کچھ دنوں میں زیادہ, کیونکہ اس کا ہوا جب نہ نکلے گا نا تو سفوکیٹ ہو سکتا ہے دماغ, یہ بلاسٹ ہو سکتا ہے, جو کوئی نرو فیل ہو سکتا ہے اس کا. اسی لیے بھگوان نے دیکھو یہ بنایا ہے کان, ہوا اس سے ہمیشہ ہوا نکلنی ہے. جیسے آپ انڈر گراؤنڈ میں, انڈر گراؤنڈ میں اگر وینٹیلیشن نہیں ہے نا تو آدمی مر جاتا ہے, جو چیزیں رکھو خراب ہو جاتی ہیں. ایون آپ کپڑے رکھیے گا اگر اس میں وینٹیلیشن نہیں ہے تو کپڑے سڑ جائیں گے آٹومیٹک. تو اس لیے جو ہے اس کو بلاک کر دینا موبائل کے, اس سے 18 سے 20, ایون لوگ کام کر رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں آپ کو سن ہی نہیں رہے ہیں. کیوں؟ کہ اس کو بلاک کر رکھا, وہ گانا سن رہے ہیں. کتنا گانا سنیں گے اس کا کوئی انت نہیں, ایک چیز ایک گانے کو کتنی بار سنو گے. لیکن نہیں, اسے کہتے ہیں پنہ پنہ چروتی چرونا نام. پرہلاد مہاراج نے کہا تھا نا, کہا وہی چیزوں کو بار بار چوس رہے ہیں. حالانکہ گنے کو بار بار چوسنے میں کچھ حد تک تو آپ کو رس ملے گا نہ, 4-5 بار, اس کے بعد پھر کیا رس اس میں ملنا ہے, پھر تو کوئی لابھ نہیں. تو اس طرح سے بھوتک چیزیں ہماری, اسی لیے ہم لوگ تمام جنم لیے, کوئی اچھا کو پورتی کرنے کے لیے منشیہ بنے, کوئی اچھا کو پورتی کرنے کے لیے باگھ بنے, کوئی سلیپنگ سونے کی اچھا کو پورتی کرنے کے لیے بھالو بنے نا, مانس کھانے کی اچھا کو پورتی کرنے کے لیے جو ہم لوگ شیر باغ بنے, اور کام آترتا کو پورن کرنے کے لیے تمام یونیاں ہیں اس کو بنے. لیکن کیا لابھ ہوا اس کو؟ تو دشپرے نان لینے کیا. یہ ہماری اچھائیں جو ہیں وہ انل کی طرح ہیں جو کہ وہ دہکتی چلی جاتی ہیں, جتنا آپ اس میں وہ ڈالو گے گھی اتنے بڑھتی جائیں گی. वो कामनाओं से कामनाएं नहीं शांत होगी, कामनाओं को समन करने से। इसीलिए ब्राह्मणों ने समन और दमन नाम का एक हथियार निकाल खोजा। अच्छा, उसके तहत जो है उनपे कोई भी लात मार दिया आकर के भृगु मुनि ने, कुछ नहीं बोली, जाओ, सहन करने की सहनशीलता वो बना लिया। और हालांकि सहनशीलता की भी परीक्षा एक हद तक ही है, कभी कभी ना, हर चीज की सीमाएं हैं, जैसा मैंने कहा, चाहे वो सहनशीलता की हो चाहे उद्दंडता की हो, एक सीमा से ज्यादा अति हो जाएगी, उसका परिणाम आपको भुगतने पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो सहनशीलता अपना अख्तियार कर लिया। हालांकि अति सहनशील अच्छा है, कोई बहुत खराब नहीं है। देखिए महाराज युधिष्ठिर को कितना सहनशीलता की वो प्रतिमूर्ति थी, कि जब उनको राज मिलने लगा तो वो रोने लगे, कैसे राज का क्या लाभ, जिसे हम लोग अपने भाई बंधुओं को ही मारा। लेकिन यह भौतिक संसार का नियम था, आपको लीडर बनना है तो आपको प्रूव करना ही होगा, उसके जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू जाना ही होगा। हाँ, कुछ ही विशेष छूट मिल सकती है, विशेष नहीं ना। जैसे आपने अगर भौतिक कर्म कर दिया तो आप चाहे जितने बड़े डीओटी हो, फिर आपको तो भौतिक संसार में आना ही पड़ेगा। अगर आपकी एक रसगुल्ला खाने की भी इच्छा बाकी रह गई, या किसी से जो है वो बदला लेने की भावना बाकी रह गई, तो फिर आपको आना ही ना। इसीलिए निर्वैरह, क्या कहा यहां पर शब्द, निर्वैरह, यानी वो तो निर्वैर थे, वो किसी से दोस्ती दुश्मनी करते ही नहीं थे। फिर ऐसी क्या घटना उनके साथ बेचारे के घट गई, देखो उनको भी अपनी सहनशीलता, भगवान शिव को भी अपनी सहनशीलता का इम्तहान देना पड़ा एक वक्त ना। तो हम भक्त मर्त जो है वो धर्मा लोगों की क्या भी साथ है, हम लोगों को तो पल पल देना पड़ा। तो इसलिए इन सब परीक्षाओं को देने के लिए तैयार रहें ना। हम लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों को हर क्षण तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों से सामना हो सकता है, कभी भी, और उस समय के लिए तैयार रहना है ना। जैसे लोग पूंजी इकट्ठा करते हैं ना, लोग पैसा इकट्ठा करते हैं कि पता नहीं कौन विपरीत परिस्थिति आ जाए, बीमारी आ जाए, शादी विवाह आ जाए, घर बनवाना पड़े, हाँ तमाम परेशानियां आ सकती हैं। तो इसी तरह से वो पूंजी है, उसको भौतिक पूंजी कहती है। भौतिक जो है वो परेशानियों से निपटने के लिए आपको भौतिक पूंजी की जरूरत है, लेकिन आध्यात्मिक परेशानियों से निपटने के लिए आपको आध्यात्मिक पूंजी की जरूरत पड़ेगी। वो भौतिक पूंजी से नहीं, आप पैसे से नहीं खरीद सकेंगे आप भगवान की कृपा को, या भगवान के क्रोध को आप पैसे से नहीं हटा सकेंगे। जैसे आपने कोई अपराध किया, आप बीमार हो गए, कभी कभी आप जो है बहुत पैसे खर्च डालिए, आप बीमारी से नहीं मुक्त हो सकते ना। हाँ, उसके लिए प्रभु की कृपा की ही जरूरत है। लोग जाते हैं क्षमा मांगते हैं कि मैं से क्या गलती हुई, प्रभु मुझे माफ करो। हाँ, ये सब चीजों का जो है वो ख्याल रखना है कि प्रभु की कृपा प्राप्ति और उसको बनाए रखना आसान नहीं। इसे कहते हैं कंटिन्यूएशन, हमेशा लगातार वो चीज सतत निरंतर रहे। निरंतरता बहुत जरूरी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ दिनों तक जप किया, इसके बाद जो है भूल जाते हैं, सोचते हैं चलो और कुछ काम कर लेते हैं गृहस्थ के, फिर कर लेंगे जप ना। उसमें निरंतरता का अभाव हो गया। निरंतरता बहुत जरूरी। आप तैर रहे हैं किसी नदी को, अभी इसमें आपने तैरना बंद कर दिया तो क्या होगा, आप डूब जाएंगे, आप बह जाएंगे दूसरे जगह आपको ना। और कभी कभी लोग इतना जो है वो जबरदस्त बड़ा काम शुरू कर देते हैं कि दम ही घुट जाता है उनका। जैसे भौतिक काम है, भौतिक काम इतने बड़े हैं, इतने दुरूह हैं कि इनको प्राप्त करने के लिए इतने भौतिक काम करने पड़ते हैं ना, इतने भौतिक काम करने पड़ते हैं कि आदमी टूट जाता है। कभी कभी तो आलाप सदन ऑफिस में पहुंचा और पता लगा कि आदमी तो गया, उसका हार्ट अटैक हो गया ना। हाँ, पता नहीं कब जो है वो, क्योंकि इतना ओवरलोडेड है कामों से कि कभी भी किसी क्षण फ्यूज ऑफ हो सकता है। इसलिए जो है निरंतरता के साथ जो है भगवान स्मरण करते रहना चाहिए। ये शरीर कभी भी जा सकता है, ये भौतिक शरीर है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो तो जो है वो परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, वो प्रभु के पास जाएगा ही। और प्रभु के पास अगर खाली हाथ जाएगा तो क्या होगा, फिर प्रभु उसको भेज देंगे उसकी इच्छा के लिए दूसरे योनि में, जाओ अब इस योनि में उसका जो है वो सुख दुख भोगो। हाँ, हर चीज के सुख और दुख दोनों पहलू हैं, भौतिक संसार या भौतिक जीवन के अपने सुख दुख हैं, आध्यात्मिक संसार के अपने सुख दुख हैं। लेकिन यह है कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, धर्म का जो आध्यात्मिक जीवन का थोड़ा भी भाग आपको महान विपत्ति से बचा सकता है, जबकि भौतिक संसार का थोड़ा भी जो है लाश, पूरा लाश है, 100 रुपया आपका गिर गया, पूरा का पूरा 100 रुपये चला गया ना। और अगर आपने तमाम जब तप किए हैं और थोड़ा बीच में रोक गए हैं तो भी वो तो आपका जमा है ही है, उसके हिसाब से आपको फिर जो है वो मौका मिलेगा। हाँ, फिर मौका मिलता है, प्रभु तो हमेशा मौका देते ही रहते, क्योंकि महान दयालु हैं। जैसे एक बच्चा है, बच्चा चाहे जितना गलती करे माँ बाप उसको मौका देने के लिए बाध्य ही है 90%। या तो फिर बच्चा इतना बड़ा हो गया हो, आदमी इतना थक गया हो, बूढ़ा हो गया कि हमने बहुत किया, अब जो मन हो करें ना, तो बात अलग है, तो थकान की स्थिति में। और नहीं तो स्थिति तो यही है कि आदमी को समझ बूझ के देख करके चलना चाहिए, निरंतरता बनाए रखनी चाहिए, कभी निरंतरता भंग न हो, जिससे कि जो है प्रभु के प्राप्ति में कोई कठिनाई ना आए। और जिन लोगों ने निरंतरता बनाए रखा है, जैसे आप देख लिए गणिका थी, गीध था, अजामिल था, इन लोगों ने बहुत हाई प्रोफाइल डिवोशनल सर्विस नहीं किया था, वो बहुत ही सिंपल भगवान स्मरण। जैसे गणिका थी, वो अपना सुग्गा को ही, तोते को ही पढ़ाती थी। सीताराम प्राचीन समय में बहुत से तोते पाले जाते थे, मेरे घर में भी एक दो तोते थे, वो राम राम जपते रहते थे ना, लोगों ने तोते को पढ़ा दिया था, उससे सुनते थे। आजकल तो लोग टेप रिकॉर्डर से सुन रहे हैं, तब तोते ही टेप रिकॉर्डर का काम करते थे, एक ऐसा भी समय था। और आप काम करते रहिए, खाना बनाते रहिए, पिट्टी सीताराम सीताराम, मेरा तोता ऐसे जो है मेरी दादी को बुलाता था, बिट्टी सीताराम सीताराम। टाइम जब हो जाता था उसका ब्रेकफास्ट का, तो 8-8 बजे के आसपास, 6 बजे से ही बुलाने लगता था, जगते एक्चुअली वो जगाता भी था, जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त भोर होती थी वैसे ही वो तुरंत जग जाता था, पहले वो बुलाने लगता था, बिट्टी सीताराम बिट्टी सीताराम। हम जानते हो बिट्टी सीताराम सीताराम ही करता था, अच्छा जगाने से लेके, और इधर जब सूर्यास्त का समय आता था तब तो नहीं बोलता था कभी, आया तो फिर कोई जो बिल्ली आ जाए, बिल्ली आ जाती थी आधी रात के तो भी चिल्ला पड़ता था, तो हम लोग समझ जाते थे कि बिल्ली आ गई। तब जो है इस तरह से आपके स्क्रीन डोर का जमाना तब नहीं था, डबल डोर दरवाजों का जमाना तब कहाँ था, लोग जो है खुले में रहते थे, नौहरों में जिसे कहते हैं, दलानों में। तो इस तरह से जो है वो याद दिलाता था हमेशा सीताराम का। आजकल लोग, पहले तो फेस्टिवल में एक प्रभु जी बेचते थे, वो टेप रिकॉर्डर प्रभुपाद जी का भजन गाता रहता था, हरे कृष्णा ना, रात दिन अपना वही। कभी कभी लोग मोबाइल में भी लगाए रहते हैं। अब तोते बचे कहाँ ज्यादा, पहले तो बहुत तोते राम राम जपने के लिए थे, अब तो सबको बेच डाला यहाँ, अब जंगल ही नहीं रहेगा, वो प्रजनन ही नहीं कर सकते। और भी ऐसे गणिका का ये काम था, देखो वही अजामिल अपना के बच्चे का ही नाम रख दिए, वो और सरल उपाय खोज लिए थे। सबसे सरल उपाय, आप बैठ के मृदंग ढोल से नहीं कर सकते या काम में व्यस्त हैं, अपने बच्चे का ही नाम रख देते थे, अपने गांव का ही नाम लोग रख देते थे, बलरामपुर विष्णुपुर इत्यादि। तो इस तरह से आप उसको याद करते थे। प्रयागराज अपने जिले का ही रख दिए, हरिद्वार रख दिए। ये बड़ी प्राचीन परंपरा बड़ी काम की थी, लेकिन धीरे धीरे लोग इसको जिस तरह से विस्मरण करते चले जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, वो बहुत ही दुखपूर्ण है, वो बड़ी दुखदाई है। छोटी छोटी चीजों का आप स्मरण नहीं कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी पुस्तकों का, डार्विन के सिद्धांत से लेके पाइथागोरस तक का सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या फायदा इन चीजों को पढ़ने से। ये मनुष्य जीवन तो लिमिटेड है, पचास लाख के नौकरी वाला आदमी भी ये मिट्टी के शरीर त्याग के जाएगा, इसी मिट्टी में मिलेगा ना, चाहे वो 100 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो, चाहे वो सोने के ताबूत में जो है दफनाया जाए ना। जैसे राष्ट्राध्यक्ष हैं और आपके एमजे हैं, सब बड़े बड़े पाप सिंगर, पाप का काम जो कर रहे थे, बड़े बड़े पाप, हाँ, आज वो सोने के जो है वो ताबूतों में दफना दिए गए हैं, लेकिन दफना मिट्टी में उनको मिलने पड़ा ना। कितना बड़ा उनका लाइफ स्टाइल था, कितना बड़ा उनका सम्मान था, रेड कार्पेट दिखता था, सब सब हो रहे थे, लेकिन अंत में हुआ क्या, मिले मिट्टी में, उसी मिट्टी में ना। तो इसलिए जो है इन सब चीजों का स्मरण रखते हुए हमारे जो प्राचीन मनीषी महर्षि थे, अपना इसी तरह का उपाय निकाल रखा था। टेप रिकॉर्डर का उपाय तो अब हुआ है, हाँ, पहले तोतों को बना दिया, वही जपते थे, हाँ, और अपना जो बच्चे का नाम रख दिया, हम खुद जपने लगे, राइट, तोतों का नाम सिखा दिया, हरि नाम तोते कर रहे हैं, हमने बच्चे का नाम, नगर का नाम, रिश्तेदारों का नाम रख दिया, हम भी कर रहे हैं। तो एक अपना अच्छा चक्र चल रहा था, लेकिन अब जो हाल है कि पढ़े लिखे बहुत हैं, अमेरिका से पढ़ के आ रहे हैं, यूरोप से, लेकिन कर क्या रहे हैं, वातावरण प्रदूषित कर रहे हैं, सब पेड़ों को काटे डाल रहे हैं, कंक्रीट का जंगल बना दे रहे हैं, 3 तल्ला पाताल लोग तक एकदम कब्जा कर लिए, पानी और नीचे भाग गया, क्या लाभ हुआ ऐसी, ये इसे कहते हैं आसुरी शिक्षा, आसुरी शिक्षा, ये दैवी शिक्षा नहीं है। दैवी शिक्षा तो वो है जो कि बिना किसी मूल्य को लिए परोपकार करे, परोपकार मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं मिलता था, और जो सरकार का काम है वो मूल्य पर करना है, आपसे वाटर टैक्स लेगी, आपसे सीवर टैक्स लेगी, आपसे पर्यावरण टैक्स लेने लगी है, आपसे सर्विस टैक्स भी लेगी, सर्विस नाम की कोई चीज नहीं है, गंदगी का अंबार से लेके गड्ढा तक पहाड़ खड़ा है गंदगी का, और सर्विस टैक्स जारी है, बल्कि बढ़ती रहेगी हर साल, ये है सेवा सरकार की। तो इस तरह से ये आसुरी शिक्षा है, इसका हम लोगों को कोई लाभ नहीं होना है, हम लोगों को दैवी शिक्षा का, दैवी संपद विमोक्ष आया, भगवत गीता में कहा है कि जो दैवी संपत्ति है विमोक्ष के लिए है, और आसुरी बंधन के लिए है ना। काम क्रोध लोभ अत्याहार अति प्रयास ये सब आसुरी में आते हैं, और समो दमो तपो शौच शांति आर्जवम ये सब जो है वो दैवी शिक्षा में आती है। इन सब चीजों का आचरण करते हुए अगर आप जो है आगे बढ़ेंगे तो ये बुद्धि अपने आप जैसे जैसे निर्मल हो जाएगी वैसे अपने अपने आप देख सकते हैं आप। जैसे एक बच्चे का आंख धीरे धीरे खुलता है, सूर्य का प्रकाश देखता है और चौंधिया जाता है, बंद कर लेता है, धीरे 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 जैसे दिन हुआ एकदम आंख खुल गई, अब आप पूरा देख सकते हैं अपनी नंगी आंखों से सब चीज। उसी तरह से हरि नाम के प्रताप से जब आपका जो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, और जो फालसी को ठीक फालसी को हम लोग कहते हैं इसको, हमारे जो लगा लेयर लगा हुआ ये हट जाएगा, बस हम लोग सब देख सकेंगे कि भौतिक संसार कितना दुखदाई है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना जो है परेशान की है। और उस सब चीज का मुख्य जो है वो उपाय हरि नाम महामंत्र से आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण। तो हम लोग हरि नाम कीर्तन फिर करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो अब जो है हम लोगों का समय समाप्त हो रहा है, हाँ, अब अगर कोई प्रश्न पूछना चाहें या कुछ आप कहना चाहें भगवत कथा में तो बड़ा अच्छा होगा। भागवतम का श्लोक सुना देते तो आज का, पहले तो आज का श्लोक सुनिए, ये चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक है, और ये दक्ष और शिवाजी के साप से संबंधित है। कस्तम चरा चर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महात। अनुवाद, भगवान शिव समग्र संसार के गुरु, शत्रुता रहित, शांत और आत्मतुष्ट व्यक्ति हैं, देवताओं में सबसे महान हैं। यह कैसे संभव हो सकता है कि ऐसे मंगलमय व्यक्ति के प्रति दक्ष बैर भाव रखता ना? तो बैर भाव कितनी गलत बात है। ये जो है देख लीजिए कि दक्ष का जो है सर भी बकरे का किया गया, बैर भाव के कारण ही तो हुआ। इसलिए महात्माओं से बैर नहीं रखना चाहिए, एक्चुअली किसी प्राणी से बैर नहीं रखना चाहिए। आप अगर एक छोटे से प्राणी से बैर रखेंगे, आप मान लीजिए आप चींटी से बैर करते हैं, वो दौड़ के काट लेगी आपको। चींटी कितना जोर काटती है, कोई कोई चींटी जहरीली भी होती है, इवन सबसे छोटी है वो मक्खी है, इवन ततैया होती है, वो भी आपको काट सकते। तो अगर आपने सांप से बैर कर लिया तो भगवान ने चाहे उसका काटा तो फिर पानी नहीं मांगता। इसलिए बैर एकदम न रखिए, और अपनी जो है वो अपने को ओवर कॉन्फिडेंस न होगी, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपने सोचा उसमें कोई दम नहीं। जैसे किसी ने अपराध कर दिया था, एक जो है वो गौरैया था ना, वो बहुत ही छोटी थी गौरैया, इसलिए कर दिया। अब गौरैया ने निश्चित कर लिया कि हम सागर को ही खाली कर देंगे, क्योंकि सागर ने उसका बच्चा अंडा ले लिया था ना। सागर कितना बड़ा था, ठाका है हा? कितना बड़ा है, फिर भी गौरैया ने पंगा ले लिया। अब जो है धीरे धीरे अंत में गरुड़ जी को आना पड़ा, क्योंकि भाई अपने जाति की बात है, स्वजाति की बात है ये ना, स्वजाति तो एक होते ही हैं। तो इसलिए जो है वो फिर गरुड़ भगवान ने दंडित करने का उसको धमकी दिया, तब जा करके वो मान गया। तो इसलिए कम करके नहीं आंकना चाहिए, अन्याय को नहीं सहना चाहिए। अच्छा, हमारे ऊपर कोई भी अन्याय हो, हमारे ऊपर क्या अन्याय हो सकता है? भौतिक अन्याय तो बहुत हो सकते हैं, हो रहे हैं, उनको मारो गोली। जो हमारी आध्यात्मिक जो है, जो भक्ति में जो विरोध की चीजें हैं जिनसे हमारी भक्ति नष्ट होती है, वो हमारे ऊपर अन्याय है। उन चीजों को बलपूर्वक दमन करना चाहिए, कभी उनसे ढीले नहीं होना चाहिए ना, कभी भी, क्योंकि वो बड़े बलवान शत्रु हैं। जो हमें अध्यात्म जो है वो भगवान की ओर जाने से रोकते हैं, वो कोई साधारण नहीं है, वो बड़े जो है शत्रु हैं। उनपे बड़ी पूर्ण तैयारी से काम करना चाहिए, और वो तैयारी क्या है, वो शस्त्र क्या है हमारे पास, वो है हरिनाम, शास्त्राध्ययन, सत्संग, सत्संग और जो है वो गुरु कृपा, भगवान की कृपा और हरिनाम मंत्र, इन सब चीजों से हम लोग पाए। और कोई अदर क्वेश्चन? जाए ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।